ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 अध्याय 26 श्लोक संख्या 5। इस श्लोक में नरक लोकों का वर्णन लिया गया है, तो ब्लैक बोर्ड में श्लोक की आवृत्ति करेंगे। अंतराल ऋषिर्वाच अंतराल एव त्रिजगत्यास्तु देशे दक्षिणश्याम अधस्तात् भूमे उपरिष्टात् च जलात् गर्भोदक जलात् अश्याम अग्निश्वाता आदय पितृगणा दिशि स्वानाम गोत्राणाम परमेण समाधिना सत्या एव आशिष आशासाना निवसन्ति। ऋषिर्वाच ऋषि ने उत्तर दिया। अंतराले मध्यवर्ती स्थान में एव निश्चय ही त्रिजगत्या तीनों लोकों के तो लेकिन दिशि दिशा दक्षिणश्याम दक्षिणी अधस्तात् नीचे भूमे पृथ्वी पर उपरिष्टात् थोड़ा ऊपर च तथा जलात् गर्भोदक सागर से यश्याम जिसमें अग्निश्वाता आदय अग्निश्वाता इत्यादि पितृगणा पितरगण दिशि दिशा में स्वानाम उनके अपने गोत्राणाम परिवार के परमेण अत्यधिक समाधिना भगवान के ध्यान में मग्न होकर, सत्या सत्य में, एव निश्चय ही, आशीष आशीर्वाद, आशा साना कामना करने वाले, निवसंति रहते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। महर्षि सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, सभी नरक लोक तीनों लोकों तथा गर्भोदक सागर के मध्य में स्थित हैं। वे ब्रह्मांड के दक्षिण की ओर भूमंडल के नीचे तथा गर्भोदक सागर के जल से थोड़ा ऊपर स्थित हैं। पितृलोक भी इसी गर्भोदक सागर तथा अधलोकों के मध्य के प्रवेश में प्रदेश में स्थित है, जिसमें अग्निश्वाता आदि समस्त पितृलोक के वासी परम समाधि में लीन होकर श्री भगवान का ध्यान करते हैं और सदैव अपने गोत्र की मंगल कामना करते हैं। लोग दोहराइए, महर्षि सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, सभी नरक लोक तीनों लोकों तथा गर्भोदक सागर के मध्य में स्थित हैं। ब्रह्मांड के दक्षिण ओर भूमंडल के नीचे तथा गर्भोदक सागर के जल से थोड़ा ऊपर स्थित है। पितृलोक भी इसी गर्भोदक सागर तथा अधलोकों के मध्य में स्थित है, जिसमें अग्निश्वाता आदि समस्त पितृलोक के वासी परम समाधि में लीन होकर श्री भगवान का ध्यान करते हैं और सदैव अपने गोत्र की मंगल की कामना करते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, हमारे लोक के नीचे सात अधः लोक हैं, जिनमें सबसे निम्न लोक को पताल लोक कहा जाता है। पताल लोक के नीचे अन्य लोक हैं, जिन्हें नरक लोक कहते हैं। ब्रह्मांड के नीचे गर्भोदक सागर फैला हुआ है, अतः पताल लोक तथा गर्भोदक सागर के मध्य ही नरक लोक हैं। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रश्न इस प्रकार है, चौथे श्लोक में, नरका नाम भगवान किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहोस्विद अंतराल इति। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि हे भगवान, यहाँ पर भगवान शब्द से संबोधित कर रहे हैं राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को। भगवान का अर्थ होता है सदेश्वर परिपूर्ण। सुखदेव गोस्वामी यद्यपि भगवान नहीं है, फिर भी उनको यहाँ भगवान संबोधित कर रहे हैं कि ज्ञान में अद्वितीय हैं, भगवान के विशेष ज्ञान को धारण करते हैं, वैराग्य को धारण करते हैं, ज्ञान वैराग्य से समन्वित हैं। विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी को भगवान संबोधित कर रहे हैं। भगवान के विलक्षण गुणों को जो धारण करता है वो भी भगवान, उसको भी संज्ञा दी जाती है। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि हे भगवान, क्या ये नरक ब्रह्मांड के बाहर या इसके भीतर या इसी लोक में भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं, कहाँ पर हैं? दो श्लोक का भी तात्पर्य नहीं है, उसका अनुवाद इस प्रकार है, त्रिगुणवाद कर्तु श्रद्धया कर्मगतय पृथक विधा सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। महामुनि सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से बोले, हे राजन, इस जगत में सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण में स्थित तीन प्रकार के कर्म होते हैं। चूंकि सभी मनुष्य तीन गुणों से प्रभावित होते हैं, अतः कर्मों के फल भी तीन प्रकार के होते हैं। जो सतोगुण के अनुसार कर्म करता है वह धार्मिक एवं सुखी होता है, जो रजोगुण में कर्म करता है उसे कष्ट तथा सुख मिश्रित रूप में प्राप्त होते हैं। और जो तमोगुण के बस में कर्म करता है वह सदैव दुखी रहता है और पशुतुल्य जीवन यापन करता है। विभिन्न गुणों के कारण भिन्न भिन्न मात्रा में प्रभावित होने के कारण जीवात्माओं को विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार से पवित्र कर्म करने से स्वर्गीय जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार दुष्कर्म करने से नारकीय जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं। जैसा भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहे हैं कि तीन प्रकार के गुणों से प्रभावित होकर प्राणी कर्म करते हैं। सभी प्राणी, मनुष्येतर प्राणी भी तीन गुणों से प्रभावित होते हैं। जैसे शेर है, रजोगुण प्रधान प्राणी है। पशुओं में गाय जो है सतोगुण प्रधान है। बंदर जो है तमोगुण प्रधान प्राणी है। तो अपने गुणों से के द्वारा वो कार्य करते हैं। जैसे भगवान कहते हैं कि जघन्य गुण वृत्तिश्च अधो गच्छन्ति तामसा। जो तामसी वृत्ति के लोग हैं अधो लोक में, नरक में जाते हैं, निम्न लोकों में जाते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। जो सात्विक गुण में कार्य करते हैं, सतो अथवा सतो गुण में स्थित हैं, वो ऊर्ध्व लोक में जाते हैं, ऊपर के लोकों में जाते हैं। जैसे चंद्रलोक, सूर्यलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक या उससे परे भगवान के धाम में जाते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जो सात्विक जीव हैं सतोगुण में कार्य, ऊर्ध्व लोक में जाते हैं। और मध्य में जो राजसी वृत्ति के लोग हैं मध्य लोक में, भूलोक में रहते हैं, भू इत्यादि लोकों में। और जघन्य गुण वृत्तिश्च अधो गच्छन्ति, अधो लोक में। जैसा कि पीछे के अध्यायों में बताया जा चुका है कि इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 7 पृथ्वी के नीचे हैं और 6 ऊपर हैं, पृथ्वी लेकर 7। तो नीचे जैसे तल, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पताल, क्रम से मैं नहीं बता रहा हूं, सबसे नीचे पताल लोक है और पताल लोक के नीचे नरक लोक है और नरक लोक के नीचे गर्भोदक सागर है। तो यहां पर बताया गया कि जो नरक लोक है गर्भोदक सागर और पताल लोक के मध्य में स्थित है। नरक ब्रह्मांड के बाहर नहीं, इसी ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड के निम्न लोकों में है। तो यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नरक लोक गर्भोदक सागर के मध्य स्थित है, ब्रह्मांड के दक्षिण की ओर। इसलिए दक्षिण दिशा में जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका पैर जो है दक्षिण की तरफ रखा जाता है और सिर जो है उत्तर की तरफ रखा जाता है। सिर उत्तर की तरफ होता है, पैर दक्षिण की तरफ। ज्यादातर लोग जघन्य गुण वृत्ति के लोग हैं, तमोगुण में कार्य करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अधिकाधिक लोग कहाँ जाते हैं, नरक लोक में जाते हैं। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि नरक में भी बहुत बड़ा क्यू होगा, बहुत बड़ा लाइन होगा। 99% लोग जघन्य गुण वृत्ति से, जघन्य गुण वृत्ति के लोग हैं, तो नरक में भी बहुत बड़ा लाइन होगा, लाइन लगाना पड़ता है। जैसे आपको रेलवे का टिकट लेने के लिए रात भर वहां खड़ा रहना पड़ता है, तो नरक में कितना लंबा लाइन होगा। ये विनोद में है, ऐसा वहां लंबा लाइन नहीं होता, वहां ऐसा सिस्टम है कि आपको लाइन लगाना ही नहीं पड़ता है। चित्रगुप्त के पास इतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर है और इतने व्यक्ति हैं जो बहुत तेजी से कार्य करते हैं, आपको प्रतीक्षा नहीं करना पड़ता है, विलंब नहीं होता है वहां। आपको जैसे जो आता है उसको फटाफट जो है क्यू में भेज दिया जाता है। तो ये नरक लोक जो है 28 प्रकार के नरक का वर्णन है और 28 प्रकार के नरकों का पीछे नाम गिनाया गया है, किस नरक में किस प्रकार के लोग जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि 28 प्रकार के नरक का वर्णन है जिसमें तामिश्र है, अंध तामिश्र है, रौरव है, महारौरव है, कुंभी पाक है, कालशूत्र है, शुकरमुख है, अंधकूप है, कृमि भोजन है, संदंश है, तप्त मुर्मि, वज्रकंटक, सालमली, बैतरणी, पियोध, प्राणरोध, विशासन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अविचि, अयहपान, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन और शूलप्रोत, दंश सुख, अवट निरोधन, पर्यावर्तन तथा सूचिमुख, तरह से नरक का नाम दिया गया है। कौन व्यक्ति किस नरक में जाता है उसका वर्णन भी विस्तार से इस अध्याय में दिया गया है। जैसे जो व्यक्ति दूसरे का धन या स्त्री चुराता है वो व्यक्ति तामिश्र नरक में जाता है। यदि कोई किसी की स्त्री को गलत से चीटिंग करके ले जाता है वो अंध तामिश नरक में जाता है। और जो व्यक्ति किसी का किसी को हिंसा कर देता है, जान से मार देता है, वो डौरव नरक में जाता है। और कोई प्राणियों का वध करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है वो कुंभी पाक नरक में जाता है, जहां उसे उबलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। जो ब्राह्मण का हत्या करता है कालशूत्र नरक में जाता है। जो धार्मिक नियमों का पालन नहीं करता है, मनमाना कार्य करता है, असित पत्र वन में जाता है। असित पत्र वन जो तलवार जैसा, जिस वन में तलवार जैसा वृक्ष होता है। जो अधिकारी ठीक से न्याय नहीं बरतता है वो शुकरमुख नरक में जाता है। जो भगवान के आदेश का पालन नहीं करता है, जो भगवान के आदेश का पालन नहीं करता है वो व्यक्ति ताम्र सदृश नरक में जाता है। इस तरह से इस अध्याय में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन दिया गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में विभिन्न नरक लोक गर्भोदक सागर से थोड़ा ऊपर स्थित हैं और वहीं पर रहे आते हैं। इस अध्याय में यह बताया गया है कि समस्त पापी लोग किस प्रकार इस नरक लोकों में जाते हैं और वहां पर यमराज के दूतों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। विभिन्न प्राणी अपने कर्मों के अनुसार सुख तथा दुख भोगते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहो उपपत्ते, फिर उनको भिन्न भिन्न प्रकार के देह दिए जाते हैं। नरक यातना में यातना देह प्राप्त करके अपनी यातनाओं को भोगने के बाद फिर उनको अलग देह दिया जाता है। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से जब यह जिज्ञासा की तो सुखदेव गोस्वामी विस्तार से इसका वर्णन करते हैं। यमराज कोई काल्पनिक या पौराणिक पात्र नहीं है, वो अपने धाम पितृलोक के स्वामी हैं। नास्तिकतावादी भले ही नरक में विश्वास न करते हों किंतु सुखदेव गोस्वामी नरक लोकों की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। ये नरक गर्भोदक सागर तथा पाताल लोक के मध्य में स्थित हैं। यमराज की नियुक्ति श्री भगवान ने यह देखने के लिए की है कि मानव प्राणी उनके नियमों का उल्लंघन न करे, इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। तो इस संसार को, इस ब्रह्मांड को भगवान बना करके इसमें नियम भी बताए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी चार नियम पालन करने के लिए भक्तों को बताते हैं। यह नियम वास्तव में मनुष्य समाज में ही हैं, पशु समाज में नियम नहीं है। ऐसे मांस भक्षण करना, मद्यपान नशा करना, अभ्यसन करना, जुआ ताश खेलना, इसके अंदर और भी बहुत सारे दोष आ जाते हैं। जैसे मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति अति क्रूर हो जाता है, पशुओं का वध करता है, या कोई शिकार के भावना से जंगल में अनावश्यक पशुओं का वध करता है, या कोई अपने को आनंद प्राप्त करने के लिए जंगल में आखेट करता है, अनावश्यक पशुओं का वध करता है, या अनावश्यक अन्य प्राणियों का दमन करता है, वो भी नरक में जाता है। तो ब्रह्मांड के जो रचयिता हैं श्री भगवान, इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए अनेक प्रकार के नियम निर्धारित करते हैं। जैसे भारत सरकार जो है नागरिकों का पालन करने के लिए एक संहिता का निर्माण करती है, कानून बनाती है, एक भारत का एक संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में भी ये नियम सब बताए गए हैं कि अगर कोई किसी का हत्या करता है तो उसको जेल दिया जाता है, किसी का कोई धन चुराता है तो उसको सजा दिया जाता है, शारीरिक या आर्थिक। तो हमारा जो संविधान है उसकी मूलभूत जो संरचना है ये इन्हीं शास्त्रों के ऊपर है। जैसे मनु महाराज ने मनु संहिता निर्माण किया है तो उसका कुछ नमूना जो है भागवत में भी दिया गया है। इसका अधिकाधिक विस्तार जो है गरुड़ पुराण में किया गया है। 28 नरकों का विस्तार से वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है, बहुत विस्तार से किया गया है गरुड़ पुराण, इसलिए लोग गरुड़ पुराण सुनते हैं। हम लोग देखे हैं जो लोग मर जाते हैं तो उनके घर के लोग गरुड़ पुराण सुनते हैं, मरने से पहले सुनना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति मर जाने के बाद सुनाते हैं लोग, वो सुनता है अथवा नहीं सुनता है, लेकिन जो बैठकर सुनते हैं वो लोग भी यही सोचते हैं कि हमारे लिए नहीं है, जो मर गया उसके लिए है। उस पर विचार नहीं करते हैं। हम अपने गांव में भी देखे हैं गरुड़ पुराण का पाठ होता है और उसके इर्द गिर्द लोग बैठकर सोते रहते हैं, जब शंख बजता है तो जग जाते हैं, बोलते हाँ समापन हो गया। गरुड़ पुराण इतना सरगर्भित है, अगर वो उसको अगर सही सही लोग सुन ले तो पाप करने से डरेंगे। तो पाप करने से रोकने के लिए सब बताया गया कि ये पाप नहीं करना, ये पाप करेंगे तो ये आपको दिया जाता है। इसका सैंपल जो है सैंपल दिखाया गया है और होलसेल में इसका क्रय विक्रय अभी बाकी है। तो इसका सैंपल है, जैसे यहां भी कोई गलती करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, या पुलिस उसको बहुत पिटाई करती है, कभी कभी चोर चोरी करता है और पुलिस के हाथ में आ जाता है तो पुलिस उसको बहुत पिटाई करती है। हम लोग थाना पर देखे हैं पुलिस चौकी में, एक चोर था, बहुत पुराना चोर था, बहुत चोरी करता था और हमेशा पुलिस से बच जाता था, भाग जाता था। एक बार पुलिस के हाथ में वो आ गया तो पुलिस उसको पेड़ में बांध करके रस्सी में उसका दोनों पैर बांध करके उल्टा पेड़ में लटका दी और नीचे से पुलिस वाले उसको गर्म पानी करके डाल डालकर मारते थे कि कहां कहां चोरी की हो कबूल करो। तो पुलिस के मार से लोग कहते हैं भूत भी बक देता है। भूत भी अपना गलती कबूल कर लेता है कि हाँ मैंने यहां यहां चोरी किया, तो इस घर में चोरी किए हो, यहाँ सामान चुरा तो सब बक देता है। पुलिस इतना पिटाई करती है कि वो सब बकना ही पड़ता है। उसी तरह यमराज के दूत भी इतना पिटाई करते हैं कि जीव बिल्कुल त्राहिमाम करने लगते, इतना पिटाई करते हैं। और अनेक नरकों में ले जाने के लिए जो मार्ग हैं, वो मार्ग में बालू बिछाया गया है और बालू के नीचे आग जलाया जाता है और तप्त बालू के मार्ग में नरक में व्यक्ति जाता है। नरक की दूरी यहां से 80,000 योजन है। इतना लंबा यात्रा तय करता है प्राणी जाने के लिए। और यमराज तो प्रश्न उठ सकता है कि ये यमराज के जो दूत है उनका पांव नहीं जलता है, उनके पास विशेष ड्रेस होता है या उनका जो शरीर होता है वो ताप से प्रभावित नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रिशियन होता है, वो इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ लेता है। जब इलेक्ट्रिशियन ट्रांसफार्मर या मीटर या इलेक्ट्रिक वायर का रिपेयरिंग करता है तो उसके पास यंत्र होते हैं या ऐसा हाथ में पहनावा होता है, उसे विद्युत के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है। तो यमराज के जो दूत हैं वो यातना से प्रभावित नहीं होते हैं, उनके पास ऐसा शरीर होता है, ऐसा ड्रेस होता है, लेकिन जो यातना भुगतने वाला प्राणी है उसे प्रभावित होता है। जब रास्ते में लंबा यात्रा करता है तो उसको प्यास लगती है, पानी मांगता है, तो यमराज के दूत उसको कोड़े से पीटते हैं और पानी नहीं देते हैं, उसको अपना मूत्र ही पीना पड़ता है, उसको मूत्र पिलाते हैं, मूत्र पान करना पड़ता है। या पिघला हुआ लोहा अयह पान, जो शराब पीते हैं, शराब पीने के आदि उनको पिघला हुआ लोहा पिलाया जाता है। अनेक प्रकार के यातनाएं दी जाती हैं। इतना पिटाई होता है, फिर नरक में जाता है, फिर नरक में और यातना सहता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेते समय, मरते समय और नरक की यातना इतनी होती है कि जीव उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो इसका यहाँ पर सैंपल का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जैसे कोई मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, यहाँ एक उसका वर्णन मिलता है कि ये चीज है, ये करने से ये दिया जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं जो नास्तिक लोग हैं वे लोग नहीं मानते हैं कि नरक है। जैसे चरवाक पंडित कहते हैं कि कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, कौन देखा है। चरवाक मुनि भी नास्तिक थे और नास्तिकों के नेतृत्व में उनका आवाज बुलंद करते हैं कि कौन देखा है कि पुनर्जन्म होता है, ये आत्मा मिलता है। तो वो कहते हैं कि जीना है तो सुखपूर्वक जियो, क्यों कष्ट उठाते हो, भले ही ऋण लेकर घी पीना हो, ऋण लेना हो ऋण लेकर घी पियो, ऋणम गृहत्वा घृतम पीवेत, यावत जीवेत तावत सुखेत, भस्मी भूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत। चरवाक पंडित कहते हैं कि कौन देखा है कि पुनर्जन्म होता है, वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है, बहुत अच्छे अच्छे लोग बोलते हैं पुनर्जन्म कहाँ होता है, यही जीवन है, इसमें जितना भोग भोगना है भोग लो, जितना भी इंद्रिय तृप्ति करना है कर लो, कौन देखता है कि नरक होगा कि नहीं होगा। बल्कि वो मानते ही नहीं है कि नरक भी है या फिर जन्म लेना है। तो ऐसे लोगों के लिए यमराज को भी बहुत मुश्किल से समझाना पड़ता है लोग बोलते हैं कि संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे लोग बोलते हैं खूब खाओ, लेकिन भक्त लोग कहते हैं कि फिर पड़ेंगे यमराज के डंडे आप भूलो मत यमराज के डंडे भी हैं। लोग बोलते हैं कि जो खाना है खाओ, ऋणम गृहत्वा घृतम पिबेत। प्रभुपाद जी इस पर कमेंट करते हैं कि देखो चरवाक पंडित भी भले नास्तिक था लेकिन वो भी घी पीने के लिए कहता है, शराब पीने के लिए नहीं सलाह देता है शराब पीने के लिए नहीं सलाह देता है, कहता है कि ठीक घी पियो, ऋण लेना हो ऋण लेकर घी पियो, शराब मत पियो। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग शराब पीते हैं, ऋण लेकर क्या पीते हैं, शराब पीते हैं। वो चरवाक को भी नहीं मानते हैं, चरवाक के फॉलोअर जो है चरवाक को भी नहीं मानते हैं, बोलते हैं चलो अभी मॉडर्नाइज हो गया है अभी सब लोग मॉडर्नाइज हो गए हैं, अभी घी नहीं चाहिए शराब चाहिए। आजकल शराब पीने के लिए लोग फ्लाइट से जाते हैं। एक व्यक्ति थे जो बिरला कंपनी में मैनेजर थे, तो उनके यहां हम लोग गए थे, तो वो बोल रहे थे कि बिरला में कई ग्रुप हैं, तो एक अशोक बिरला थे वायुयान दुर्घटना में मर गए। तो बता रहे थे कि लोग इंदौर से एक बार शराब पीने के लिए फ्लाइट से विमान से यहां मुंबई में आए थे। लोग शराब पीने के लिए इतना परिश्रम करते हैं, और दूध पीने के लिए लोग इतना लंबा नहीं जाएंगे, बल्कि शराब लोग दुकान में जाकर खरीदते हैं और दूध जो है घर घर में दूध वाला लेकर पहुंचाता है। दूध का महत्व कम हो गया है, शराब का महत्व बढ़ गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ठीक है ऋण लेकर घी पीना अच्छा है, शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन लोग शराब ही पी रहे हैं, क्योंकि अपने इंद्रिय तृप्ति में अपनी चेतना को खो दिए हैं। जब व्यक्ति अतिशय इंद्रिय तृप्ति करता है, इंद्रिय भोगों में लिप्त हो जाता है, तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वो विचार नहीं कर पाता है क्या करना चाहिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, और इस तरह से वो घोर नरक में, रौरव नरक में, महारौरव नरक में, तामिश्र अंध तामिश्र अनेक नरकों में घूमते रहता है, भिन्न भिन्न नरकों की यातना सहता है। तो ये नरक से, नरक लोकों में जाने से बचने के लिए व्यक्ति को यमराज के उपदेश का अनुसरण करना चाहिए। यमराज कहते हैं कि देखो, अपने यम दूतों कहते हैं कि उन्हीं लोगों को मेरे पास ले आना। अजामिल प्रसंग में कहते हैं जो लोग भगवान का कभी नाम नहीं जपते हैं, जिह्वान भक्ति भगवत नाम गुण ध्येयम, चेतस न स्मृति तस् चरणारविंदम, जो कभी भी भगवान का स्मरण नहीं करता है, या भगवान का नाम जप नहीं करता है, या भगवान के चरण में प्रणाम नहीं करता है, चेतस न स्मृति तस् चरणारविंदम, वैसे लोगों को मेरे पास ले आना। यमराज के पास एक बार धर्म संकट उपस्थित हो गया था। कभी कभी जैसे पुलिस किसी निर्दोष व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है, तो पुलिस चौकी का लोग घेराव कर लेते हैं, अरे ऐसे आदमी महात्मा को ये लोग अरेस्ट कर लिए हैं। कभी कभी लोग पुलिस चौकी को ही जला देते हैं, कभी कभी पुलिस भी निर्दोष व्यक्ति को पकड़कर ले जाती है। जैसे मंडूक मुनि को गलती से राजा के कर्मचारी लोग ले गए और सूली पर चढ़ा दिए। ये घटना प्रसिद्ध है कि मंडूक मुनि के आश्रम में चोर छिप गए थे। एक बार चोर किसी राजा के खजाने में चोरी किए, और चोरी करके जैसे जा रहे थे, राजा के कर्मचारी उसके पीछा करने लगे, तो अपना जान बचाने के लिए चोर लोग मुनि के आश्रम में छिप गए। कभी कभी ऐसा होता है कि गलत आदमी भी साधु का ड्रेस पहन करके आश्रम में रह जाता है कि पहचान में नहीं आएगा। साधु का ड्रेस पहन लिया, मंदिर में आ जाएगा तो कैसे पहचान में आएगा। तो चोर लोग देखे कि राजा के कर्मचारी ये लोग पीछा कर रहे हैं, ये भी सवारी में होंगे, वो भी सवारी से चल रहे होंगे, जैसे पहले के लोग घोड़े में चलते थे, या ये लोग चोर लोग पैदल होंगे, तो देखे कि भागने में हम सक्षम नहीं होंगे, तब मंडूक मुनि के आश्रम में छुप गए। पीछा करते करते राजा के कर्मचारी देख लिए दूर से कि ये लोग मुनि के आश्रम में, तो अन्वेषण करते करते वो लोग पकड़े गए। जितने चोर थे सब अरेस्ट हो गए। तो राजा के कर्मचारी लोग समझे चोरों का सरदार जो है यही है, चोरों का आश्रय दिया है। तो मंडूक मुनि को भी राजा के कर्मचारी अरेस्ट कर लिए और चोरों समेत सबको सूली पर चढ़ा दिए। लोग निर्दोष थे बेचारे। हमारे यहां लोग कहावत कहते हैं, लोग भोजपुरी में कहावत है कि खेत खाए गदहा और मार्ग खाए जुलहा। खेत खाए गदहा, गदहा जो है खेत खाया और जुलहा को मार पड़ता है। तो चोरी कौन किया और सजा जो है निर्दोष आदमी को मिला। तो मंडूक मुनि वो श्राप दे दिए यमराज को कि मैं तो चोरी नहीं किया था, तुम्हारा कैसा अन्याय शास्त्र है, मैं तो निर्दोष और मुझे क्यों सूली पर चढ़ाया गया। तो यमराज कहे कि आप बचपन में एक तितली को एक कांट चुभो दिए थे। तितलियां होती हैं ना जो उड़ती हैं बरसात में, अनेक तितलियां उड़ती हैं, छोटे छोटे बच्चे तितलियों से खेलते हैं। तो बाल्यावस्था में मंडूक मुनि एक तितली के शरीर में कांट चुभो दिए थे सूली जैसा ऐसे निम्न मार्ग से। तो यमराज कहे कि देखिए आप ये गलती किए थे, इसके चलते आपको ये जो है सूली पर चढ़ाया गया है। पहले के राजा लोग बड़े बड़े लोहे का सूली तैयार करते थे और जो लोग बहुत गलती करते थे उनके निम्न मल द्वार से उन उस सूली को निकाल दिया जाता, शरीर को, शरीर के ऊपर के भाग से। तो मंडूक मुनि कहे कि उस समय हमारी क्या अवस्था थी, उस समय बाल्य अवस्था के थे। ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष तक व्यक्ति नाबालिग रहता है, 12 वर्ष तक बचपन में कोई गलती करता है क्षम्य हो जाता है। छोटा बच्चा अगर कोई गलती कर देता है तो वो दंडनीय नहीं होता है, वो अज्ञान है, उसको ज्ञान नहीं है। जैसे बैल किसी को मार देता है रोड में तो उसको फांसी नहीं होता है, क्योंकि बैल जो है अज्ञानी है। कभी कभी सांड या भैंसे किसी को मार देते हैं, उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसे ही ज्ञान शून्य है। तो बच्चा भी नाबालिग होता है, छोटा बच्चा, उसको अपना हित अनहित उसको भी मालूम नहीं होता है। बच्चे को अगर खाने में आप जहर भी दे देंगे तो खा जाता है। बच्चे को आप हाथ में ब्लेड भी दे देंगे तो अपने शरीर में ही लगा, उसको मालूम नहीं है कि ये ब्लेड है, वो अपना ही तनहित भी नहीं जानता है। तो मंडूक मुनि, इनको मंडव्य मुनि भी कहा जाता है। मंडूक मुनि बहुत बड़े लायर थे, वो अपना वकालत खुद किए। जैसे कभी कभी व्यक्ति जज के सामने खुद ला पेश करता है, जज के सामने लॉजिक करता है, तर्क देता है, कह कि आपके जुरिस्टिक्शन में लिखा है कि इतने समय के बच्चे को ये दंड देना चाहिए, या आप शास्त्र के संविधान के विरुद्ध दंड दिए हैं हमें, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं, आप मर्त लोक में जाकर शूद्र परिवार में जन्म लीजिए। तो वही यमराज जो है मंडूक मुनि के साथ से दासी पुत्र बन करके आए, जो पांडवों के जो वंश में आए, जो दासी अंबिका की दासी के पुत्र बन करके आए जिनका नाम जो है जैसे धृतराष्ट्र पांडु उसी श्रेणी में नाम क्या है भूल रहा हूं विदुर विदुर दासी पुत्र थे उनको भी राजकीय सम्मान से उनका पालन पोषण भीष्म पितामह कराए क्योंकि दासी भी राजा के द्वारा पालित होती हैं तो अंबिका अंबालिका तो अंबिका या अंबालिका के दासी के पुत्र थे विदुर तो यमराज जी दासी पुत्र कर विदुर विदुर के रूप में आए तो कहने का अभिप्राय यह है कि कभी कभी अच्छे आदमी भी को भी पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं बाद में जांच पड़ताल होता है तो ये मिलता है कि नहीं ये आदमी गलत नहीं किया है ये अच्छा आदमी है भूल से उसको दंड मिल जाता है तो यमराज भी कभी कभी इस तरह के मुसीबत में फंस जाते हैं जब अजामिल को लेने के लिए तीन दूत आए थे अजामिल मन क्रम वचन से पाप किया था मनसा कर्मणा बाचा हमेशा पाप में रत रहता था और सब प्रकार का पाप किया था ऐसा कोई पाप न हो जो न किया हो तो यमराज ने तीन दूतों को भेजा था यमराज के दूत आए अजामिल को लेने के लिए तीन दूत आए विकराल जैसे आप डायरामा में देखते हैं यमराज के दो दूत होते हैं उनका बड़ा बड़ा बाल होता है और ऐसा बाल होता है खड़ा होता है और खड़ा होता ही नहीं है आग जैसे उससे चिंगारी निकलता है जैसे तांबे का वायर होता है तांबे का तार होता है ना कूपर वायर वैसे उससे चिंगारियां भी निकलती हैं और उनका फेस जो है बिल्कुल काला होता है और दांत बहुत बड़ा बड़ा और बाहर होता है जैसे सुअर का दांत है जंगली सुअर का दांत होता है और उनकी जो उनका जो दाढ़ी होता है वो भी भयंकर होता है और उनका जो नख होता है वो भी सुप नख होता है जैसे सुपनखा का सुप जैसा नख होता है सुप आप देखे होंगे जो धान चावल को ऐसे ये किया जाता है फटका जाता है तो उनका नाखून इतना बड़ा होता है सुप जैसा उनका पेट भी बहुत बड़ा होता है उनका पैर भी बहुत बड़ा होता है उनका आंख भी जगन्नाथ जैसा होता है जगन्नाथ का तो थोड़ा अच्छा भी है जगन्नाथ से भी भयंकर होता है जगन्नाथ जी भी डर जाएंगे जगन्नाथ जी तो नहीं डरते हैं तो इतना भयंकर आंख होता है मुंह होता है शरीर भयंकर होता है जब यमराज के दूतों को अजामिल ने देखा तो उसके कपड़े गीले हो गए मल मूत्र कर दिया भय से और होश ठिकाने में आ गए तो बहुत पाप किया था वो सोचा भी नहीं था कि ऐसी स्थिति आएगी पाप करने वाला व्यक्ति नहीं सोचता है कि ऐसी स्थिति आने वाली है तो भय से इतना त्रस्त हो गया कि अपने पुत्र को पुकारा नारायण 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 आय संस्कृत पहले लोग बोलते थे नारायण आय मतलब नारायण आओ अपने पुत्र को बुला रहा था भय से इतना भय भी था जब कोई व्यक्ति बहुत भय से भयभीत हो जाता है तो अपने परिवार वालों को बुलाता है बचाने के लिए एक हमारे गांव में एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो अपने पास में वो बहुत पैसा लिए थे तो जो व्यक्ति पैसा लिया रहता है वहां बार बार हाथ जाता है कोई आदमी पैसा लेता है तो भीड़ में हमेशा हाथ जाता है कि नहीं है तो कमर में पैसा बांधे थे तो बार बार उनका हाथ वहां जाता था कि नहीं तो जो पॉकेटमार लोग होते हैं वो गौर करते हैं कि इसका हाथ कहां जाता है जहां हाथ बार बार जाता है समझिए वहां कुछ पैसा है हम लोग भी ट्रेन में जाते हैं तो देखते हैं कि मोबाइल है कि नहीं कभी कभी ऐसा हाथ जाता है या कोई कह दे कि ट्रेन में अगर कोई कह दे कि भाई पॉकेट मारों से सावधान रहिए तो तुरंत हाथ जाता है जाता है ना तुरंत हाथ पॉकेटमार लोग ही कहते हैं कि पॉकेटमारों से सावधान रहिए, वो लोग बोलते हैं और बोल करके देखते हैं कि कहां कहां लोगों कहां जा रहे वो लोग बड़े ट्रिक से बोलते हैं कि पॉकेटमारों से सावधान रहिए और देखेंगे जहां जिसका हाथ जाते समय यहां चीज है। तो ट्रेन में जा रहे थे तो उनका हाथ बार बार, क्योंकि वो लोग बोले कि पॉकेटमार भी आते हैं, आप लोग अपना सामान संभाल कर रखिए, जैसे हम लोग अनाउंस करते हैं संडे को अपना पर्स मोबाइल संभाल कर रखिए, पॉकेटमार भी आते हैं। तो पॉकेटमार लोग ट्रेन में उनको पकड़ लिए, कई ग्रुप में थे वो लोग कई ग्रुप में होते हैं, जैसे आपका मोबाइल ले कोई लिया है तो दूसरे को तीसरे चौथे को ऐसे तुरंत मोबाइल जो है कई किलोमीटर दूर चला जाता है, इतना लंबा क्यू में होते हैं वो लोग। आपके पास से जो मोबाइल लेता है दूसरे को दे देता है, दूसरे तीसरे को ऐसे हो आप बोलेंगे कि यही आदमी लिया है, बोले देखिए चेक कर लीजिए कहां लिया हूं, वो लिया लेकिन उसके पास से तुरंत चला जाता है। अगर आप सर्च करेंगे तो बोले कहां लिए हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। तो जब उनके पास से वो पैसा छीनने लगे वो लोग, 10 के ग्रुप में थे, तो जोर से चिल्लाए और झूठे अपने एक बड़े भाई का नाम लिए, नाम लेकर पुकारे कि आओ 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 दौड़ो दौड़ो, नाम लिए। जब नाम लिए जैसे अजामिल नारायण नाम लिया वैसे नाम लिए अपने भाई का, बड़े भाई का नाम लेके, देखो देखो ये लोग ऐसा करें आओ 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 दौड़ो। तो जो पॉकेटमार लोग जो थे, जो चोर लोग, समझे कि सही में इसके आदमी बगल में इसके आदमी हैं, वो भाग गए वो लोग बुला रहे इसके आदमी इधर उधर हैं आसपास में। आजकल तो बुलाने से भी लोग नहीं आते हैं ट्रेन में, मान लीजिए आपका कोई चोरी कर रहा है, आपका कोई गला भी दबा रहा है तो बगल वाला भी नहीं ये करता है, बचाव करता है, या बगल में कोई किसी को निर्दोष भी मारता है तो लोग आजकल लोग अपने काम में चले जाते हैं, कोई बचाता नहीं है। आजकल लोगों की दया नहीं रह गई, सोचता कौन उस पछड़े में जाए, कहीं हमारे ऊपर भी लगा देगा, इसलिए चलो। पहले के लोग रक्षा करते थे, अगर किसी को कोई मारता हो या कोई उसका उत्पीड़न कर रहा हो या किसी का सामान कोई छीन रहा है तो बगल के लोग पूछते थे भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों इसको सता रहे हो, क्या किया है। लेकिन आजकल लोग सोचेंगे कि कौन जाए, कि हमारे ऊपर भी वो आ जाएगा। तो एक बार ट्रेन में हमने देखा था, लोकल ट्रेन में एक व्यक्ति को 10 लोग मार रहे थे और उसको कोई नहीं बचा रहा था, सब देख रहे थे नाटकीय ढंग से, कोई बोल नहीं रहा था कि भाई क्यों मार रहे हो। तो इसी तरह अपने बचाव के लिए जामिल ने नारायण नाम लिया, नारायण आया अपने पुत्र को बुलाया। तो यमराज के जो 3 दूत थे वहां देखे कि विष्णु दूत आ गए, बहुत सुंदर शंख चक्र गदा पद्म लेकर। भगवान के दूत भी चतुर्भुज होते हैं, 4 भुजा में 4 आयु धारण करते हैं। तो विष्णु दूतों ने बचा लिया और यमराज के दूतों को खदेड़ दिए। यमराज के दूत जान बचाकर भागे, उल्टे पांव भागकर यमराज के पास आए, बोले क्या आप राजा हैं और कोई आपसे भी बड़ा कोई राजा है? हम लोग तो सोचते थे कि आप ही सबसे बड़े आदमी हैं, लेकिन हम लोग जान बचाकर भाग कर आए। तो बोले यमराज, बोले क्या बात है? तो यमराज को भी सोचना पड़ा, यमराज के अपने न्याय बुक में संशोधन करना पड़ा कि देखो इन इन लोगों को मत ले आना, तो जो लोग पापी हैं उनको पाप की सजा मिलती ही है, लेकिन अगर कोई भगवान का भक्ति किया है, थोड़ा भी भगवान का, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अगर थोड़ा भी भगवान का अगर भजन किया है तो इसे नरक लोक से बच जाता है। ये नरक लोकों का वर्णन करके अंत में सुखदेव गोस्वामी कहेंगे कि नरक में जो जाने में अनजाने में जो लोग पाप कर चुके हैं, नरक लोगों की यातना से कैसे बच सकते हैं। परीक्षित महाराज फिर प्रश्न करेंगे कि इतना भयंकर है नरक की यातना, इसे हम कैसे बच सकते हैं? तो इससे बचा जा सकता है, इसका वर्णन जो है आगे के श्लोक आगे के अध्यायों में आप सुनेंगे। समय बहुत हो गया तो यही हम विराम देते हैं। शील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।